नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। भारत और इथियोपिया के संबंधों को सामरिक स्तर तक विस्तार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ वार्ता में इस पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी।
हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। हमें हमारे सहयोग के प्रमुख आयामों जैसे इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचार विमर्श करने का मौका मिला।
दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एकजुटता दिखाने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता को मजबूत करने के लिए इथियोपिया का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री आज इथियोपिया की संसद के सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के वेल्लूर में श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे मंदिर परिसर में ध्यान मंडप का उद्घाटन और वृक्षारोपण करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति दोपहर में हैदराबाद में सिकंदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम जाएंगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक वीबीजी रामजी को कल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। एक रिपोर्ट।
विधेयक में खेती के मौसम में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में दुनिया भर के 170 से अधिक नीति निर्माता, वैज्ञानिक और चिकित्सक समावेशी और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य इलाज में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का भारतीय सर्वेक्षण आज नई दिल्ली में भूस्थानिक अभियान विकसित भारत की ओर विषय पर कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यशोभूमि में इसका उद्घाटन करेंगे। भूस्थानिक तकनीक शहरी आयोजना, पर्यावरण प्रबंधन और बुनियादी ढांचा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में राज्य के 31 जिलों में 3752 सरपंच पदों और 28410 वार्ड सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान दोपहर 1 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में कुल 394 पंचायतों और 7908 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। वोटों की गिनती दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संवाददाताओं से बताया कि 18 दिसंबर से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास उचित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी।
जम्मू कश्मीर आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शैली की कुश्ती यानी दंगल की मेजबानी कर रहा है। इसमें देश विदेश की 100 से अधिक पहलवान रुस्तमे जम्मू कश्मीर खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। अस्वस्थ ऑलराउंडर अक्षर पटेल की जगह शहबाज अहमद को टीम में लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।